उनको कोई पालन करने वाला नहीं। 3 दिन तक अंगूठा, सॉरी 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, 7 चीजें हो गई। 3 दिन तक अमृत का, अंगूठे में अमृत रहता, वो चूसते हुए बढ़ते हैं और फिर बैठना शुरू करते 3 दिन। 3 दिन में जो है खड़े होना, इस तरह से कंप्लीट मनुष्य होकर के तैयार हो जाते हैं। जो मध्यम भोग भूमि, उसमें हर चीज में 5-5 दिन लगते हैं। जो उत्तम मध्यम में, हाँ 5-5, जो जघन्य भोग भूमि है उसमें 7-7 दिन लगते हैं। इस प्रक्रिया में 49 दिन में वो तैयार होते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। तो ये भोग भूमि यानी 3 काल, पहले सुखमा सुखमा काल, फिर सुखमा काल, फिर सुखमा दुखमा काल। क्योंकि सुख से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन बाद में जो है पीड़ा होने लगी, परिवार उनकी जिम्मेदारी आ गई 3रे काल के अंत अंत में। 4थे काल को कहते हैं दुखमा सुखमा। उत्पत्ति तो दुख पूर्वक होती है, लेकिन मोक्ष सुख पाने की उनके भीतर योग्यता है और एटमॉस्फियर, इसलिए 4था काल सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है, जिसमें हम अपना सुख से, दुख से पैदा हुए हैं पर मोक्ष सुख पा सकते हैं, इसलिए 4था काल सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा कहलाता है। 5वां काल दुखमा काल है, जहां धर्म तो रहता है पर उत्पत्ति भी पीड़ा से होती है और मरण भी पीड़ा में ही होता है। कोई स्वर्ग से ज्यादा नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता 5वें काल में पैदा होने वाला, इसलिए उसको दुखद माना। 6ठा काल तो दुखमा दुखमा काल है ही, जिसमें कि निरंतर दुख बढ़ते चले जाते हैं और 5वें काल तक ही धर्म रहता है। 5वें काल, पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, 4था काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम, तो 42,000 वर्ष में से 21,000 का 5वां और 21,000 का 6वां काल। इस तरह से 5वां काल जो 21,000 का है उसमें धर्म तो रहेगा पर तीर्थंकर इत्यादि महापुरुष पैदा नहीं होंगे। 4थे काल में महापुरुष इत्यादि पैदा होंगे और मोक्ष भी जाएंगे। 5वें काल के बाद, जब 5वें काल का अंत होता है तब उसमें अंतिम समय 5वें काल के 1 मुनि, 1 आरिका, 1 श्रावक, 1 श्राविका, 4 ही लोग धर्मात्मा, ये मान के चले 4 धर्मात्मा बसते हैं। जब उन धर्मात्मा लोगों पर भी राजा अत्याचार करने लगता है तब वे समझ जाते हैं कि अब राजा का अत्याचार होने लगा, साधु के ऊपर अगर अत्याचार करने लगा है तो अब धर्म नष्ट होगा। और वे 3-4 मिलकर संलेखना ले लेते हैं। उनकी संलेखना 3 दिन में पूरी होते ही साथ 6ठा काल शुरू हो जाता, 5वां काल खत्म, अग्नि नष्ट हो जाती है, सूर्य इत्यादि अपना प्रकाश देना, आज जो साइंस कह रही है कि कुछ दिन के बाद जो है सूर्य का प्रकाश मिलना बंद होगा, तो सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है, अग्नि समाप्त हो जाती है। फिर जीवों की उस समय तक पहुंचते पहुंचते एज 20 बरस रह जाती है कुल, और 2 हाथ की ऊंचाई रह जाती, इतने इतना कम हो जाता है, आयु भी कम हो गई, हाइट भी कम हो गई, उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। छोटे छोटे घर बिल बना करके रहते हैं, मिट्टी खाना शुरू करते हैं 5वें काल की शुरुआत में, और 5वें काल नहीं, 6ठे काल की शुरुआत में। फिर 6ठा काल धीरे धीरे समाप्त होता है, आखिरी में पहुंच करके 16 वर्ष की आयु रह जाती है, 1 हाथ का शरीर रह जाता है। और जब ये होता है, कहना चाहिए 6ठे काल का अंत होना होता है, तो 7-7 दिन की बुरी वृष्टियां होती हैं। मैं तो उसको अपनी भाषा में कहता हूं कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स होना शुरू होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक आना शुरू होते हैं। उसमें लिखा है कि बादल के गुब्बारे, पत्थर की वर्षा के मायने क्या, वॉल्केनिक एक्टिविटी होना मतलब पत्थरों की वर्षा हो रही, लावा नीचे से आग बह रही है, तो क्या है, पूरा का पूरा वही अर्थक्वेक, पूरा मूवमेंट हो गया टेक्टोनिक, तो सब नष्ट हो जाता है। और उसमें जो 72 पेयर और सिंगल बहुत सारे लोग, उनको देव लोग ले जाकर के गुफाओं में, विजार की श्रेणियों में, उनमें उनको छुपा देते हैं, वो बच जाते हैं। और फिर इसके बाद 49 दिन तक जो वृष्टियां 7-7 दिन की होती, तो पूरी सृष्टि जो है नष्ट हो जाती है। उसके बाद पुनः जो है अच्छी वृष्टियां होती हैं और फिर से सब शांत होता है 49 दिन के बाद, तब फिर से शुरू होता है। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको उत्सर्पणी कहते हैं, उत्सर्पणी का पहला काल। अवसर्पणी का जो 6ठा काल है वही उत्सर्पणी का पहला काल है। धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे 5वें से लास्ट 6ठवें तक हुआ था वैसे ही 6ठे से 5वें की तरफ आएंगे और फिर सारा का सारा वही साइकिल शुरू होगा। इसमें जो है पहले 6ठे काल के समान पहला काल आएगा, 5वें काल के समान दूसरा काल आएगा, उसमें 4थे काल के समान 3रा काल आएगा, उसी में तीर्थंकर इत्यादि सब होंगे। क्योंकि फिर भोग भूमि, 3 कालों में तो भोग भूमि रहना है, इसलिए 2 काल निकल गए, 3रे काल में कर्म भूमि की लास्ट है और 3रा काल पूरा हुआ, तो 4थे काल में जगन भोग भूमि, 5वें में जो है मध्यम भोग भूमि और 6ठा उत्सर्पणी के 6ठे में उत्तम भोग भूमि, और इस तरह ये साइकिल पूरा हो गया। इसको कहते हैं कि 12 बजे से 6 बजे तक और 6 बजे से 12 बजे है वो ही 6 घंटे इधर भी एक डिक्रीज हो रहे हैं और इधर जो है फिर इंक्रीज हो रहे हैं, एक पूरा साइकिल जो है पूरा होता है, क्लॉक वाइज चलता रहता है वो, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, इस तरह से ऐसे 6 कालों के बारे में एक सामान्य अपन समझ सकते हैं। और हर एक काल में क्या क्या होता है ये भी है सब लिखा हुआ, उसको और डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में कर सकते हैं।
जैसे हाइट बताते हैं पहले 500 धनुष ऊंची होती थी।
आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान करो, आज्ञा विचय नाम का, जो चीजें हमारे समझ में नहीं आती हैं भगवान की ऐसी ही आज्ञा है, ऐसा विचार करके उनको स्वीकार कर, आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान। परमाणु हमने कभी नहीं देखा, साइंस वाले बोला चिल्लाते हैं परमाणु होता, कोई साइंटिस्ट ही बता देवे कि ये है परमाणु, दिखा दे विजिबल है क्या, कहते अनडिवाइजेबल अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम, अगर विजिबल होता तो क्या मतलब था, क्या आप सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा कर तो सकते हैं पर दिखा सकते हैं नहीं, ये सूक्ष्म पदार्थ हैं, बहुत दूर है अमेरिका, आप भी नहीं गए होंगे और आपने कहीं देखा भी नहीं होगा कभी, लेकिन आप मानते हैं कि है, कैसे मान लेते हैं आप बिना देखे सब चीजें, दूर की चीज भी मान ली आपने, हैं भगवान महावीर स्वामी हुए थे, ऋषभदेव हुए थे, मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं, मान लिया आपने, ये अंतरित कहलाते हैं, काल की अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा जो सूक्ष्मता है वो हमारे समझ में नहीं आती पर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आज की साइंस कितनी डेवलप हुई वो ही बता देता हूँ, पहले तो आपको आज्ञा की बात ही करूंगा, फिर थोड़ी परीक्षा कर लीजिएगा, परीक्षा कैसे, डायनासोर 180 फीट का स्केलेटन मिला डायनासोर का, डायनासोर क्या है वो रेप्टाइल है, जैसे हमारी छिपकली है वो उतनी बड़ी हुआ करती थी एक समय था, आप इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, करना पड़ेगा आपको, साइंस कह रहा है कि छिपकली इतनी छोटी सी नहीं हुआ करती थी, डायनासोर जो है इतना बड़ा 180 फीट का, आप विश्वास करेंगे कि एक आदमी का स्केलेटन 18 फीट का स्केलेटन मिला, जिसके शरीर का ढांचा 18 फीट का है वो जब पूरा का पूरा होगा तो कम से कम 20-22 फीट का तो हो गई, भगवान महावीर स्वामी 10.5 फीट के थे, आपको स्वीकार करेंगे इतना तो कर सकते हैं, भगवान ऋषभ देव 30,000 फीट के थे, अब इसमें आपको क्या दिक्कत है, इतना ही तो कह रहा हूँ कि 10.5 फिट के थे, 20 फिट का स्केलेटन मिलता है डायनासोर, 180 फिट का होता थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा, 30,000 फिट के थे, इसमें क्या बात, रहे होंगे 30,000 फिट के। दूसरा आज जब मैं एंथ्रोपोलॉजी वाले से पूछो तो वो कहता है कि ये जो कशेरु हैं वो 33 हैं और एक समय हुआ करता था कि जो 264 थे, अब 264 थे तो फिर क्या हुआ होगा, उसकी स्थिति क्या रही होगी, कितना बड़ा मैं मनुष्य रहा होगा, तो रहा होगा, अपन इतना इमेज कर सकते हैं, पर कुछ चीजें हैं जो विश्वास की हैं और विश्वास से ही का मानना पड़ेगा।
महाराज जी ये जो काल है वो अपने लिए है, जैसे आपने कहा विजय में तो अभी भी
चौथा काल ही है, ये काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, बाकी जगह पर कहीं कहीं पर वो भूमि की कल्प हमेशा से है, वो अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा लोक के बारे में पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ फिक्स है वो भूमि, उत्तम मध्यम जगन कुछ क्षेत्र हैं इस जम्बूद्वीप में जहाँ फिक्स हैं, और सिर्फ भरत और ऐरावत 2 क्षेत्र हैं जहाँ कालपट प्रजन माने पहले से लेके छठा तक होता और काल परिवर्तन विधेय में भी होता, पर चौथे काल की शुरुआत से चौथे काल का अंत, फिर चौथे काल की शुरुआत, फिर चौथे काल बस चौथा काल वेरी करता है वहाँ पर, और कोई फर्क कहीं कहीं पहला ही काल है, कहीं दूसरा है, कहीं तीसरा है, कहीं चौथा है, और अपने भरत ऐरावत में 6 काल बस इतना, ऐसा काल परिवर्तन। और एक एक वो भी कहा गया है कि नरक में मानिएगा झट्टा काल और आपके देव में मान लीजिएगा बिल्कुल पहला काल, और क्या बोलते हैं मलेच्छ खंड में भी चौथा काल के समान ही रहता, नहीं वो भूमि तो जो विदेश क्षेत्र है वहाँ तो चौथा काल ही रहता, स्वयंभू रमण द्वीप है वहाँ पर पंचम काल हमेशा रहता है, वहाँ से जीव हमेशा स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा तो अलग अलग इमेज कर सकते हैं वहाँ की जो स्थितियाँ बनी हैं उनको देख करके उस समय की। सिर्फ त्रियंश अंतिम द्वीप है, अंतिम समुद्र है, वहाँ सिर्फ त्रियंश पर पंचम काल बढ़ता, सब त्रियंश सर चले जाते हैं। इस पंचम काल में सबसे ज्यादा नरक की भर्ती होगी मनुष्यों के द्वारा और सबसे ज्यादा स्वर्ग की भर्ती होगी स्वयंभू रमण के तिरंचों द्वारा, ये लिखा हुआ है, तो देख ही तो रहे हैं यहीं पर नारकी जीवन बिता रहे हैं तो कहां जाएंगे, नरक जाएंगे, अधिकांश नरक से आएंगे, पंचम काल में अधिकांश नरक ही जाएंगे, और पशु जो है भोले भाले सीधे साधे वो सीधा स्वर्ग जाएंगे, दूसरे स्वर्ग तक चले जाएंगे। बाद में तक जा सकते हैं पर इतना सहना नहीं है, इसलिए दूसरे तक। मनुष्य भी आज 16वें स्वर्ग तक पूरा नहीं जाएगा, क्षमता तो 16वें स्वर्ग तक की है, पर 5वें 6वें स्वर्ग से ज्यादा नहीं जाता अगर बहुत अच्छा कर चुके। नीचे भी आज 7वीं पृथ्वी तक कोई नहीं जा सकता, नरक में 6ठी पृथ्वी तक जाए, इतनी क्षमता, इतना पाप भी नहीं कर सकते। पाप तो करेंगे पर इतना पाप नहीं कर सकते कि इतने नीचे उतर जाए, उसके लिए भी ताकत चाहिए। ऐसा अपने यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं अलग अलग।
सितंबर का प्रवचन शुरू होता है।
होने वाले जीव और पुद्गल के और सभी द्रव्यों के जो परिवर्तन हैं उनको मापता है। अब जैनिज्म में काल चक्र क्या चीज है जो कि निरंतर हो रहा है, ये पंचम काल चल रहा है, ये छठा काल चल रहा है, इसकी क्या वो है? तो ये जो काल परिवर्तन है वो सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। पहली चीज एक अपने अंदर पहले थोड़ी सी मैं कल सोच में रहा कि
भरत और ऐरावत के अलावा और कितने क्षेत्र हैं।
हाँ ये तो पहले नंबर जो
पहले
थोड़ा सा जो है लोक के बारे में एक आउटलाइन कर ले। कुछ नहीं, लोक के बारे में यही है, आप एक ये रख लें सामने, इसी का उपयोग कर लें। 60
सेवन
हाँ वही ले लें, इसी को ले लें, ये आसान है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा है ऊर्ध्वलोक। ये पूरा लोक है, इसको लोकाकाश कहते हैं। जहाँ तक 6 द्रव्य हैं वो लोकाकाश है, पुरुषाकार है। पुरुष जो है दोनों पैर फैला के अपने कंधे पर ऐसे हाथ रख ले तो जो आकृति बनती है वही तो ये आकृति है। पुरुष लोक, लोक पुरुष संस्थान। संस्थान कैसा है, जैसे कि पुरुष है अपने दोनों कंधे पर पैर फैला के, नीचे पैर फैले हुए, इतनी डायमेंशन बना दी,
दोनों हाथ फैले
और दोनों हाथ ऐसे रखे हुए कंधे पर, ये
कमर
पर। ये पूरा का पूरा है ऊर्ध्व लोक और ये पूरा है अधो लोक। इसमें जो लाइन है बस ये मानिए मध्य लोक, ये
पुरुष की।
ये तो अब इन तीनों लोकों का जो कहना चाहिए अलग अलग, इसमें तीन अधोलोक में तो नारकी जीवों के आवास है, ऊर्ध्वलोक में देवों के आवास है, कुछ आवास जरूर हैं। जो ये जो मध्यलोक की एक लाइन दिख रही है इसके थोड़ा सा नीचे दो भागों में नरक शुरू होने से पहले स्थान है जहाँ की व्यंतर और भवनवासी देवों के रहने के भी स्थान बने हुए हैं,
मध्यलोक और
नरक के बीच में वो बने हुए। और पूरे मध्यलोक में भी वे देव आकर के विचरण कर सकते हैं।
मध्यलोक
ये ना मध्यलोक कहलाता है। मध्यलोक में का विस्तार जो है एक राजू ऐसा पूर्व पश्चिम की तरफ है, डेप्थ में जो है 7 राजू है और हाइट तो कहीं दी नहीं है। हाइट इतनी मान के चलेंगे इसकी कि इसमें सेंटर में एक सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। ये असंख्यात द्वीप समूहों का को रिप्रेजेंट करता है मध्यलोक। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है और सेंटर में जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, उसको घेरे हुए बलयाकार लवण समुद्र है, उसको फिर घेरे हुए धातकी खंड है, फिर उसको घेरे हुए कालोदरी समुद्र है, फिर उसको घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है और फिर उसका पुष्करवर समुद्र है। ऐसे द्वीप समुद्र असंख्यात, आखिरी वाले का नाम दिया है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र।
असंख्यात समुद्र
है, उनमें से 2.5 द्वीप के बारे में अपने को विशेष जानने का है, नंदीश्वर द्वीप के बारे में, कि नंदीश्वर द्वीप की बार बार चर्चा आती तो वो 8वां द्वीप है, 8वें नंबर का द्वीप है।
पहला
जम्बू द्वीप है, दूसरा धातकी खंड है और तीसरा पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है, उस इंडिकेट करता है कि उसकी भीतरी सतह पर ही मनुष्य रह सकते हैं, बाहर की आउटर उसमें फिर मनुष्यों का अभाव है,
मतलब वहां से लेकर आखिरी तक
असंख्यात द्वीप समुद्र में फिर कोई मनुष्य नहीं, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं।
उनके जम्बू द्वीप से 2.5 द्वीप तक,
जम्बू द्वीप तो पहला द्वीप है, उसके बाद दूसरा द्वीप और पुष्करवर का आधा, इसलिए 2.5 हो गया। 2.5 द्वीप को ही मनुष्य लोक कहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य लोक कौन सा है, तो 2.5 द्वीप। उसके बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में विकलेंदी तो होते ही नहीं है, मनुष्य भी तो होते ही नहीं, तिरंच होते हैं, तो आखिरी में जाकर के स्वयंभू रमण द्वीप में तिरंच होते संगी पंचेंद्री होते हैं, इसके अलावा और किसी कोई जीव राशि वहां नहीं है। जो भी विकलेंद्री पंचेंद्री हैं, मनुष्य तिरंच, वो सब इस ढाई द्वीप में है। ये अब ढाई द्वीप में जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में भी छह पर्वत हैं और उन छह पर्वत की वजह से सात क्षेत्र हो गए। उन सात क्षेत्रों को एक बार अपन दिमाग में सेट तो कर ही लें, फिर उसके बाद वो ज्यादा ठीक है। ये हो गया जम्बूद्वीप, और ये
पूरा डायग्राम
ये जम्बूद्वीप का है वो ऐसा, क्योंकि इसमें इस तरह का एक सर्कल है, ये इसको ऐसे ऐसे मान के चलिए
प्लान में
प्लान। हाँ, तो ये और ये समुद्र दिख रहा है, कालोदधि समुद्र दिख रहा है ये, और ये पूरा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में ये जो दिखाई पड़ रहे हैं अपने लिए, ये वाई ये पहाड़, ये तो क्षेत्र है, ये पहाड़, तो एक दो तीन पहाड़ इस तरफ है। हाँ नहीं, ये तो छोटा वाला विजयाल है, एक दो तीन, और फिर ये एरिया, ये क्षेत्र दिख रहा है, इसी तरह से जो है ये क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है, ये लास्ट है, ये अपना भारत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भरत है, यहाँ ऐरावत है, ये बीच का इतना बड़ा जो है वो विदेश क्षेत्र है। ये जो सेंटर में है ये सुमेरु है, यहाँ पर
तो सुमेरु पर्वत के आसपास है,
पूरा विदेश क्षेत्र है ये, यहाँ चौथा काल हमेशा है। ये भारत और ऐरावत क्षेत्र सेम कंडीशन है, जो जो यहाँ का कल्चर है वो यहाँ का सारा कल्चर है, ऐसा मान के चले। जिस तरह का विदेश क्षेत्र के नॉर्थ में है, सॉरी साउथ में है, वही कंडीशन नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, तो विदेश क्षेत्र के नॉर्थ में ऐरावत है, विदेश क्षेत्र के साउथ में अपना भारत क्षेत्र, भारत और ऐरावत क्षेत्र में ही। ये तो अकेले जम्बू द्वीप हुआ, इसी तरह से धाकी खंड है, धाकी खंड में भी भारत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र है, वहां पर भी
विदेश क्षेत्र है,
उसमें भी विदेश क्षेत्र है, वहां पर भी भारत और ऐरावत, पर इससे दूने विस्तार वाले हैं, हाँ वहां दो दो रहेंगे, वहां विदेह दो रहेंगे, पर भारत ऐरावत एक ही एक रहेंगे, भारत ऐरावत एक ही एक रहेंगे कि दो दो रहेंगे धाकी खंड में, एक को दो, हाँ पांच तभी तो बनेंगे, ठीक है, वहां पर दुगनी रचना रहेगी, ठीक ठीक मैं भूल रहा था, दो भरत और दो ऐरावत रहेंगे वहां पर, और दो विदेह रहेंगे, और फिर पुष्करवर्दी पूरा है तो उसमें चार चार होना चाहिए, कहते लेकिन आधा पुष्करवर ले रहे हैं इसलिए फिर वहां से भी दो दो, तो दो भरत दो ऐरावत, और धातकी खंड के दो भरत दो ऐरावत, जम्बूद्वीप का एक भरत एक ऐरावत, कितने भरत ऐरावत हो गए, पांच पांच हो गए। इन पांच पांच भरत ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है पहला से लेकर छठा काल तक, बाकी इस विदेश क्षेत्र जितने भी हैं, यहाँ एक है वहाँ दो दो हैं, उन सब में चौथा काल ही रहता है,
और सिमिलरिटी भी रहती है, जब पांचवा यहाँ चल रहा था सब जगह
सिमिलरिटी रहती, काल परिवर्तन जो है वो सब जगह एक जैसा रहता, पांच पूरे ढाई द्वीप में। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा क्लियर
हो गया, ऐरावत अलग अलग नाम क्यों रखा, कुछ तो डिफरेंस होगा, भरत ऐरावत में जब
यहाँ के चक्रवर्ती, पहला चक्रवर्ती यहाँ का जो होता है उसका नाम भरत है, उसी के नाम पर इसका नाम भरत परस पड़ गया, वहाँ के चक्रवर्ती का नाम ऐरावत है, वहाँ ऐरावत नाम पड़ गया,
बस केवल ये
जा नहीं सकते, यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते
विदेह क्षेत्र में जा सकते,
नहीं विदेह में तो जा ही नहीं सकते, पर
विदेह में भी जा सकते हैं, लेकिन कोई विद्याधर या देव लोग ले जाए तो हम ढाई, मनुष्य ढाई द्वीप में कहीं भी जा सकता है, विद्या और देवों के बाद, हाँ इसी सा शरीर पूरे ढाई द्वीप में, हाँ कहीं भी जा सकता है, कोई विद्याधर इत्यादि ले जावे, देव ले जावे तो जा सकता है। अब देखो भगवान को एक लाख योजन ऊपर देव लोग ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए भगवान को ले गए,
ये
इधर खड़ा उठता ऊंचा एक लाख योजन वाला छोटा मोटा, तो
कुलकुल स्वामी का भी तो
विदेश क्षेत्र गए थे, कुलकुल स्वामी ऐसी श्रुति जनश्रुति है, तो जाने में कोई वो नहीं है, पर हाँ गिरा देते वो भूमि, मुनि महाराज जी को ले, मुनि महाराज जी चरण में चले जाते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं लिखा उसमें, जाने में वो भूमि से सिद्ध होते हैं तो मुनि बन गए, और किसी ने उनको वहां पर गिरा दिया और वहीं से मोक्ष हो गए, तो वो साधारण व्यक्ति का नहीं आया कि वो भूमि गए वहां मिले और उनसे सब, इस तरह का नहीं
है, भूमि
है ये सब देखिएगा। अब हम एक क्या चीज बता दें इसमें, ये जो काल परिवर्तन होता है इसमें, तो जो पहला दूसरा तीसरा काल होता अवसर्पणी का, इसमें दो तरह के काल होते हैं, एक डिक्रीजिंग इरा होता है, एक इंक्रीजिंग इरा होता है, सब चीजें आयु बल ऊंचाई सब मनुष्य की इंक्रीज होती है, वो उत्सर्पणी काल कहलाता। जहां सब डिक्रीज होता है वो अवसर्पणी काल, उसमें छह छह होते हैं। अवसर्पणी में पहला दूसरा तीसरा काल ये भोग भूमि कहलाती है, उत्तम मध्यम जगन, और उसी को दूसरा नाम देते हैं सुखमा सुखमा काल या सुखमा काल, फिर तीसरा सुखमा दुखमा काल। ये तीन नाम दे दिए अपन ने, और तीनों सुखमा सुखमा कहो या उत्तम भोग भूमि कहो, सुखमा काल कहो या मध्यम भोग भूमि कहो, सुखमा दुखमा काल कहो या जघन्य भोग भूमि कहो, ये तीन कालों में यहीं पर भोग भूमि रहती, यहां भी और यहां भी। लेकिन कुछ भोग भूमियां हैं जो शाश्वत हैं, ये विदेश क्षेत्र के पास देवगुरु उत्तर गुरु, ये शाश्वत उत्तम भोग भूमि है। बाकी ये जो क्षेत्र हैं, जो इसके अलावा भरत हरि विदेह नहीं भरत भरत हेमवत हरि फिर विदेह, तो भरत हेमवत और हरि इनमें जो है मध्यम और जघन्य भोग भूमि है, और यहाँ पर भी जो है जो इस तरफ के एरिया है उनमें भी मध्यम और जघन्य भोग भूमि बनेगी इस तरह की, वो हमेशा शाश्वत भोग भूमि है। तो आपने जो कहा ना कि भोग भूमि कहाँ पर है, तो इन इनमें तो कभी कभी तीन काल जब परिवर्तन होते तब भोग भूमि बनती है, बाकी जगह पर जो फिक्स भोग भूमि है
वो विदेश क्षेत्र में भी है।
विदेश क्षेत्र के इधर बाजू में ये उत्तर गुरु देव गुरु, ये उत्तर गुरु देव गुरु, इन दोनों में शाश्वत उत्तम भोग भूमि है, बाकी मध्यम और जघन भोग भूमि इन क्षेत्रों में। इसी तरह हर एक में बना लेंगे, ये भोग भूमि के मायने हैं, जहाँ की छह कर्म नहीं करते हुए भी जीवन यापन की सारी सुविधाएं हैं उसे भोग भूमि कहते हैं। कर्म भूमि जहाँ जीवन यापन के लिए छह कर्म हमें करना जरूरी है, हंसी मस्ती कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य जो भी है ये सब करना पड़ते हैं, तब भोग भूमि में वही जीव जाते हैं जो कि दान इत्यादि देते हैं, विशेष रूप से उनके दान के फलस्वरूप उनको भोग भूमि मिलती है। मनुष्य आयु का बंद कर लिया फिर दान इत्यादि दिया तो उसके फलस्वरूप भी भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होते हैं, मनुष्य की तरह तिरंश भी होते हैं मनुष्य भी होते हैं, वहां पर प्रेयर की तरह रहते हैं। माता पिता जब मरते हैं तो वे अपने मरने से पहले एक पुत्र और पुत्री को जन्म दे करके मर जाते हैं, वे उसका पालन पोषण नहीं करते। उत्तम भोग भूमि है तो वे दोनों बेटे एक साथ जो जन्मे हैं वे तीन दिन के अंदर अंगूठा चूसते चूसते बड़े होना शुरू करेंगे, तीन दिन तक अंगूठा चूसेंगे, अगले तीन दिन में बैठना शुरू कर देंगे, अगले तीन दिन में खड़े होना शुरू कर देंगे, अगले तीन दिन में दौड़ना शुरू कर देंगे, अगले तीन दिन में युवा हो जाएंगे, अगले तीन दिन में समस्त विद्याएं प्राप्त कर लेंगे, और अगले तीन दिन में सम्यक दर्शन के योग हो करके और 21 दिन में उनने अपना तैयारी पूरी कर ली। मध्यम भोग भूमि में 5-5 दिन लगेंगे, सभी क्रियाओं में 7 क्रियाएं हैं तो 35 दिन लगेंगे, और जघन भोग भूमि में 7-7 दिन लगेंगे, 49 दिन में वो ये सब चीजों से रेडी हो जाएंगे। ये प्रक्रिया भोग भूमि की है।
और वहाँ की आयु भी ज्यादा है आपने बताया,
आयु बहुत है, मध्यम की 3 पल है, मध्यम की 2 है, जघन की 1 पल है, बहुत बड़ी आयु है, करोड़ों वर्षों से भी अधिक। ये अपन इस तरह का है, तिरंश का भी ऐसा ही है और इनका भी, इनको शांतिपूर्वक ही अपना जीवन यापन करते हैं।
वहाँ से जाना मोक्ष अनिवार्य
नहीं, वहाँ से कोई मोक्ष नहीं जाएगा, वहाँ से मनुष्य नहीं हो सकते, वहाँ से देव में ही जाना पड़ेगा, नियम से नरक भी नहीं जाएंगे, सिर्फ एक दरवाजा खुला है भोग भूमि से देव जा सकते, बस
तीनों जगह से जघन
मध्यम जघन उत्तम सब में से ये भोग
पंचम काल में कोई जा सकता,
ठीक है ना। अच्छा, कर्म भूमि में फैसिलिटी ये है कि हम अपने अच्छे कर्म करके और मोक्ष भी पा सकते हैं। भोग भूमि और कर्म भूमि में फर्क यही है, भोग भूमि में अच्छा तो लगता है लेकिन वहां से जो है कोई व्यक्ति साक्षात मोक्ष नहीं जा सकता। पर कर्म भूमि में भी जब तीन काल चौथा पांचवा छठवा उसमें से सिर्फ एक चौथे काल में ही मोक्ष जाने की सुविधा है, पांचवें छठे काल में मोक्ष जाने की सुविधा नहीं है। महापुरुष जितने होते हैं वो चौथे काल में ही होते हैं, काल चक्र इस तरह चलता रहता है।
तो वहाँ चौथा काल जहाँ चल रहा है महापुरुष हमेशा होते हैं,
हमेशा होते हैं, 24 तीर्थंकर होंगे, मैंने शलाका पुरुष महापुरुष जो मैंने पढ़े वो सब वहाँ होंगे।
तो चौथे काल को छोड़ के अगर किसी को मोक्ष जाना है तो विदेह में जाना पड़ेगा,
विदेह में हमेशा चौथा काल है,
हमेशा वही जाना पड़ेगा।
हाँ, मैंने कहीं से भी जाएंगे चौथे में ही जाएंगे, जब भरत ऐरावत में चौथा हो तो वहाँ से चले जाओ, विदेह में हमेशा चौथा है वहाँ से जाओ, वहाँ भी कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में बस देवगुरु उत्तर गुरु में भोग भूमि है, बाकी विदेह के ये 32 32 ये 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर जितना बड़ा भारत है उतने उतने यहाँ पर ये इतने क्षेत्र हैं, 32 32 क्षेत्र हैं, 32 32 क्षेत्र विदेश क्षेत्र में, 32 देश, और हर एक में एक तीर्थंकर हो सकता है, तो 32 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं एक विदेह में, 5 विदेह में 160 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, और कम से कम हो तो इन 8 के बीच एक, इनके बीच एक 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 4, एक विदेह में मिनिमम 4, 5 विदेह में मिनिमम 20 तो रहेंगे, 19 नहीं हो सकते,
मतलब 5 विदेह क्षेत्र हैं,
5 हैं, ये तो एक हमने बता दिया।
ऐरावत है उससे कितना गुना बड़ा है विदेह क्षेत्र, काफी बड़ा
था। हाँ, डबल डबल रचना होती जाएगी। ये है लगभग 526 सही 9/16 इतना है। अब इसका दुगना और फिर उसका और दुगना, फिर उसका और दुगना,
ये तो कई गुना बड़ा है भरत एरावत। कई
गुना मैंने भरत एरावत 190वां भाग है इसका, पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग। न जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, इतना बड़ा। मैं तो इसको जो है गोंडवाना लैंड बोलता हूँ। एक समय था जब गोंडवाना लैंड था, फिर वो टैथिस सी में से बीच में डिवाइड हो गया और फिर दोनों तरफ ये पूरी मैंने बहुत बड़ी संरचना रही होगी, वो भी इसी तरह जम्बूद्वीप के समान ही तो रही होगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े अगर तो सबको जोड़ दिया जाए एक साथ तो ऐसा गोल बन जाएगा।
एक प्रश्न और उठता है महाराष्ट्र, नंदीश्वर द्वीप किधर है?
ये तो है पहला द्वीप जम्बूद्वीप, इसके बाद 7 द्वीप निकल जाने के बाद
आठवां
7 समुद्र निकल जाने के बाद 8वां द्वीप आ जाएगा।
लेकिन वहाँ मनुष्य
कहते ना 7 समुद्र के पार जाना,
लेकिन मनुष्य नहीं, मनुष्य ढाई द्वीप में है।
हाँ, वहाँ देव लोग जाके पूजा करते हैं, वहाँ पर 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप, और हर एक जिनालय में 108 मूर्तियां हैं और हर एक मूर्ति 500 धनुष ऊंची है।
अच्छा,
स्पेशल इसलिए हम नंदीश्वर की पूजा अपन यहाँ करते हैं, उसका महत्व बहुत है। वहाँ देव ही जाते हैं पूजा करने। 5 मेरु हो जाएंगे, 1 मेरु जम्बूद्वीप में, 2 मेरु जो है दातकी खंड में, 2 मेरु पुष्करवर द्वीप में, 5 मेरु की तो वन करते हैं, 5 मेरु की पूजा करो। तो जब ये देव लोग जाते हैं तो जब नंदीश्वर द्वीप जाके वहां से वापस लौटते समय पांचों मेरुओं की 80-80 जिनालय की वंदना करते हुए और फिर देवलोक वापस लौट जाते हैं।
5
मेरु में 80 जिनालय, 16 मानना पड़ेंगे, 16 बनते हैं
80,
पूरे 5 में 80 एक एक में 80। क्या करना अपने को, अपना भारत क्षेत्र अच्छा कौन जगह होता है होता नहीं, इसलिए मैंने कहा ऐसा आंसर। लोकेट कर नहीं सकते अपन इतनी आसानी से, दिक्कत वाला काम है क्योंकि आज
अपने दिया वो पूरा बढ़ गया तो छोटा पड़ा,
तो भी छोटा भारत क्षेत्र का विस्तार ही इतना है।
जो मंदिरों में 3 24 बनी रहती है ना, पिछली और आने वाली और अभी की, जैसे अभी जो अवसर पर नहीं चल रहा है उसकी 24 होगी, एक वर्तमान 24 और पिछली जो
उत्सर्पणी
और आने वाला
उत्सर्पणी, वैसे
हमारा जो
उत्सर्पणी
ऐसा चलता रहता है।
हाँ, 12 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 12 बज गए हैं तो उतने ही 6-6 घंटे। मैं तो इसको ऐसे घटित किया था कि 20 साल तक वो घूमी, पिताजी का खा रहे हैं, कमाना तो है नहीं, फिर थोड़ी मध्यम आ गई, थोड़ी चिंता हो गई, अब खा पिताजी को ही रहे 30 साल तक, अपना कुछ स्टेबल नहीं हुआ है पर खाओ नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ी चिंताएं आ गई हैं कि कैसे अब, तो दूसरा थोड़ा मध्यम भोग भूमि, और फिर 30 से उसमें तो जगन मैंने भोग भूमि तो है, अभी थोड़ा थोड़ा है, सब पिता का पैसा अभी अपने पास है, उसी को कर रहे हैं, अपना भी कुछ कमा रहे हैं। आखिरी तक 40 वर्ष तक मैच्योर भी हो जाता व्यक्ति और बहुत सारी चिंताएं उसके साथ में लगी जाती हैं, फिर अब उद्यम कर्म भूमि उसके बाद शुरू होती 60 और 70 साल में, या इसको 10 का बना लें, 10 साल तक भोग भूमि प्रथम है, 20 साल में मध्यम है, 30 साल में 30 साल तक जघन, ये ठीक बनेगा, और फिर उसके बाद कर्म शुरू, 30 साल के बाद कर्म शुरू, चौथा काल आ गया। अब 30 से 40 तक बिल्कुल सुनहरा काल है, आप चाहो तो आत्मकल्याण कर सकते लेकिन उसमें ख्याल नहीं रहती चौथा काल, और फिर तो 50 के बाद पंचम काल है, 40 से 50 तक तो छठा काल है, 50 से 60 तक
हम तो ऐसा करते हैं। भोग भूमि में अंतर यह है कि वहाँ तो कोई कर्म करना नहीं पड़ता है, यहाँ पढ़ने के लिए या
करना है, पर अपन ने अपना कुछ प्लान नहीं किया ना कि अभी तो पादे मगर के खा रहे हैं एक तरह से,
अर्थोपार्जन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तो ठीक है,
अर्थोपार्जन के लिए नहीं करना पड़ता, अपने को सेटल करने के लिए कषायमंद होती है, तो कषायमंद तो अपन देखें तो शुरुआत में बचपन में तो होती कषायमंद, तो घटित कर सकते हैं अपने जीवन में भी, चाहो काल जो है व्यतीत होते हैं 60 वर्ष की उम्र तक, यही है काल,
अच्छे से ज्यादा काल
10-10 साल
ही मान के चले, 60 के ऊपर बहुत कम है।
कृत्रिम जिनालय तो होते हैं, ढाई द्वीप में तो है और नंदीश्वर द्वीप में है, इतना ही वर्णन आता है, और किसी द्वीप के जिनालय का वर्णन आता नहीं है, देवों के विमानों में जिनालय होते हैं। तो काल परिवर्तन आपको समझ में आया कि बहुत आसान है, 3 अवसर्पणी के तीन शुरू के काल तो भोग भूमि के हैं और बात के तीन जो है वो कर्म भूमि के हैं, पंचम चौथा पांचवा और छठवा काल चौथे काल
शुरू में सुक्ष्म सूक्ष्म बताया था,
सुखमा फिर सुखमा दुखमा, सुख के साथ दुख लग गया, चौथा वाला दुख के साथ सुख है।
अच्छा, दुखमा सुखमा।
हाँ, तो पैदा तो होंगे दुख से लेकिन मोक्ष पा सकते हैं, इसलिए सुखमा कह दिया उसको। और पांचवा तो दुखमा है, नहीं पांचवी पांचवा दुखमा है,
केवल दुखमा।
हाँ, और छठा दुखमा दुखमा
एक्सट्रीम चालू होगा, छठे से पांचवा,
फिर बाद में छठे से छठा,
छठे से
छठा। हाँ, अभी दो छठे में ऐसा कि छठवें काल की शुरुआत से छठवें काल का अंत है डिक्रीज हो रहा है।
हाँ,
अब छठे काल के अंत से छठे काल की शुरुआत इंक्रीज हो रहा है। फिर पंचम काल के अंत से पंचम काल की शुरुआत इंक्रीज हो रहा है। चौथा काल, तीसरा काल, मतलब चौथा काल,
एक काल कितने बड़ा टाइम का बताएं?
पूरे काल जो है छह काल, दस कोड़ा कोड़ी सागर के,
दस कोड़ा कोड़ी सागर,
टेन करोड़ इंटू करोड़ और सागर, पन्ने साहब ने इसलिए पन्ने याद कर लिया। दस
वो पांचवे और छठवे काल का है, 21-21
हजार समझ में आने वाला है। तो पहला काल जो है चार कोड़ा कोड़ी का,
अच्छा।
दूसरा जो है वो तीन कोड़ा कोड़ी का, तीसरा काल दो कोड़ा कोड़ी का, इतना तो निपट गया, बहुत बड़ा मामला। चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर लो तो पांचवा काल 21,000 का, छठा 21,000 वर्ष का। ये छोटे छोटे
कम
बहुत छोटा पीरियड,
मतलब सबसे बड़ा भोग भूमि
का। पहला काल चार कोड़ा कोड़ा, फिर तीन, फिर दो, फिर एक एक में से भी थोड़ा कम, और वो जितना कम बचा वो सब।
छठवा काल जो है वो 42,000 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि दो बार होगा,
एक डिक्रीज और एक इंक्रीज।
पांचवे काल के कितने हजार वर्ष बीत गए?
भगवान महावीर स्वामी को होके कहते हैं कि 2,500 साल हो गए, तो इतने साल बीत गए हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के तीन वर्ष के बाद पांचवा काल शुरू हो गया था।
अच्छा, इसलिए 2,500 साल
बीत, इसलिए 2,500 साल बीत है।
21,000 साल का
है, 21,000 का है। और कोई कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं, भगवान महावीर स्वामी को होके 14,000 वर्ष हो गए हैं जब ये ग्रंथ लिख रहे हैं। हाँ, तीन मान्यताएं हैं, अपन ने एक स्वीकार की है 2,500 वाली विद्यानंद जी महाराज ने, एक 7,000 की है जब, क्योंकि तीनों भगवान की वाणी है, उसमें यह भी लिखा है कि इन तीन में से एक सही है, मैं किसे सही कहूं? तो वो कहते हैं कि मैं इलाचारी का शिष्य इस बारे में अपनी जिह्वा नहीं लाता, मैं तो लिख देता हूं। तीनों में से सही एक ही है, पर कौन सा है मैं नहीं कहता, मुझे तीनों सिरोधारी है क्योंकि तीनों परंपराओं से मिले हैं, मुझे श्रुति है।
वो भी उचित है क्योंकि श्रद्धा करनी है,
बस श्रद्धा ही तो करनी
है थी कि उसमें नहीं आना,
इसमें नहीं, क्योंकि हमारे हमारी अप्रोच के बाहर है, हम कहां तक।
20,000 का भी मेरे ख्याल से एक दूसरी मान्यता 29,000 की भी है शायद, वो उस आर्टिकल में ऐसा।
29,000 तो संभव ही नहीं, 21,000 तो टोटल का है।
29,000 वो काल की जो
ड्यूरेशन,
काल का ड्यूरेशन जो
है 21,000,
मैं चेक करके
फिर आप देखिएगा, गलती से छप गया होगा। संभव
नहीं, उसने दोनों चीजें दी है, इसलिए वो किस कंटेक्स्ट में दी है वो मैं देख के थोड़ा सा बताऊंगा। वो टिक्की हो जाए,
कर्मभूमि एक कोड़ा कोड़ी सागर की रही,
कर्मभूमि एक कोड़ा कोड़ी सागर,
18 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि।
हाँ, मैंने 4, 3, 7 तो 9, 9, 2, 18 जो है पूरा 18 गुरु सर्पणी और सरकार में आता
है, इसलिए भूमि का टाइम कर्म भूमि का।
तो अपने लिए फैसिलिटी मोक्ष जाने की तो थोड़ी मिलेगी, ज्यादा थोड़ी मिलेगी, भूमि भूमि में वहाँ थोड़ी जा सकते
हैं, मोक्ष नहीं जा सकते।
तो मोक्ष जाने का काम
से तो मोक्ष जा सकते हैं, गाड़ी रुकती है कम है, चलती जा रहा है प्लेटफॉर्म पर
ये, तो ये रुकने का काम है, आपको स्टेशन कौन सी चूज करना, किस पर रुकना है, इतनी देर नहीं तो भाई ट्रेवल करो, कितना काल परिवर्तन है ये एक मोटे तौर से। अच्छा, इसमें
समझ में आ गया।
हाँ, इसमें क्या है कि जब तीसरा काल समाप्त होने को होता है और कर्म भूमि शुरू होती है, तो उसके पहले जो कंडीशन बनती है उनमें 14 लोग होते हैं जो व्यक्ति को भोग भूमि से कर्म भूमि की शिक्षा देते हैं, ये उन्हीं को अपन कुलकर कहते हैं, ये एक टर्म। हाँ, अपन ने पढ़ा था कुलकर, कुलकर जो कि लोगों को समूह में एक साथ रहने की शिक्षा देते हैं, वो आखिरी कुलकर का ये काम है। बाकी कुलकर तो समय समय पर जैसी जैसी स्थिति बन जाती, तो जैसे सबसे पहले तेजांग नाम के कल्प वृक्ष, जो कि 10 कल्प वृक्ष होते हैं वो भूमि, जिनसे कि लोगों को सुविधाएं मुहैया होती हैं, तो कहते हैं उसमें से तेजांग नाम का कल्प वृक्ष अपने तेज देना काम कर देता है, तो अंधेरा सा उनको मालूम पड़ने लगता, तो वो शिक्ष और सूर्य और चंद्रमा दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले तो उनका प्रकाश दिखते नहीं है रहते हुए भी, क्योंकि तेजांग नाम का कल्प वृक्ष बहुत एनलाइटेड होता है, तो जब वो दिखना शुरू होते भयभीत होकर उनके पास आते हैं, तो पहले वाले शीर्षंकर वो कुलकर उनको समझाते हैं, है वो भूभूमि के जीव अभी, लेकिन उनको समझाते हैं अभी, उनको उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है, तो उनको समझाते कि ये सूर्य चंद्रमा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कल्प वृक्ष कम होते हैं, तो उनकी सीमाएं निर्धारित कर देते हैं, भैया तुम्हारे इधर के कल्प वृक्ष तुम उपयोग करना, तो लड़ाई होने लगती है, पशु पक्षी भी हिंसक होना शुरू हो जाते, तो उनको लाठी वगैरह से डराना शुरू कर देते हैं। ये सब क्रियाएं उसमें लिखी हुई है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि उसको तो पढ़ना ही बेहतर है। इस तरह कैसे मतलब डेवलप कैसे हुआ होगा कर्म, एकदम थोड़ी होता कि इधर भूभूमि से कर्म भूमि होता रहा है, धीरे धीरे जो है आखिरी के 1000 वर्ष में जब शेष रह जाते हैं तब ये काम शुरू होता है, और धीरे धीरे सब सब चीजें सिखाते हैं। फिर इसके बाद फिर जब छठा काल आएगा और पंचम आएगा, फिर जैसे ही जो है तीसरा काल आना शुरू होगा तो फिर वैसे ही वही तो कर्म भूमि वाले में बन जाएंगे,
बन जाएंगे
से कर्म भूमि आएगी,
बच्चों को रहने लायक बनाते।
हाँ वैसा ही है
महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप में जो मंदिर तो बनाए गए हैं
कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यकृत हैं, और अकृत्रिम मतलब जो मनुष्यकृत नहीं है, जो शाश्वत है।
तो वैसे रचना तो देव लोग भी कर सकते हैं, मनुष्य जरूरी नहीं है, रचना तो देव लोग भी कर सकते हैं,
की
मंदिरों,
लेकिन अपने यहाँ कहाँ इस
अकृत्रिम जिनालय में,
अकृत्रिम जिनालय यहाँ कहाँ है, देव भी कोई इतना शाश्वत नहीं होते,
इसलिए अपन उसको इसलिए उनको उनको नहीं बताया कि देव पनीत है, ऐसा नहीं लिखा, कृत्रिम लिखा है,
बस बनाएंगे तो नष्ट करेंगे
तुरंत, उनको समेटना पड़ेगी विक्रिया, विक्रिया से बनाएंगे सारा समेटना पड़ेगा, इसलिए अकृत्रिम का मतलब मैंने ये नहीं बताया कि देव पनीत है, नहीं, अकृत्रिम मतलब शाश्वत, हमेशा से है, कभी नष्ट नहीं होते, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यकृत है तो कभी ना कभी नष्ट हो। बस अब अपने को इसके बाद जो टॉपिक है काल परिवर्तन हो गया, अब अपन अनुप्रेक्षा के बारे में एक दिन समझ लेंगे, और एक दिन गुण स्थान के बारे में, और भी मैंने कल तो नोट करके रख लिए थे कि टाइम हो गया अनुप्रेक्षा, पुनर्जन्म पर अपन चर्चा करना चाहेंगे तो एक दिन पुनर्जन्म पर चर्चा कर लेंगे, एक दिन अनेकांत और साधुवाद पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे, एक दिन संलेखना पर कर लेंगे, और
पर एक दिन
इतना, हाँ बस एक आउटलाइन बता दी कि भाई कभी आपको जरूरत पड़े तो फिर पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, एक बार में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर अब पढ़ेंगे आप कभी तो ये सब चीजें आपको लगेगा कि टच में आ गई हैं, तो उनको आसानी से पढ़ सकते, नए शब्दों का परिचय भी हुआ, कई शब्द नए नए हैं जिनके अर्थ क्या बोलता है, हर आदमी किताब की भाषा बोलता है, मैं भी अब किताब पढ़ने लगा, हर आदमी किताब की भाषा बोलता है, मैं भी अब किताब पढ़ने लगा हूं, मैं भी अब आदमी की भाषा समझने लगा, व्यंग ही है एक तरह से अगर कोई सोचे तो, मतलब जो एक अनफॉर्मल और एक जो सहज हमारा डायलॉग होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा, और वो जब तक नहीं बनता है तो सेटिस्फेक्शन थोड़ी होता है, एक अनौपचारिक बिल्कुल कि हमने अगर कुछ कह दिया है तो उनके ठीक ही अर्थ निकाले जाएंगे, वही कहलाता सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, कि हम कुछ भी कहेंगे उनके सही अर्थ निकाले जाएंगे, और जहां ये भय हो कि हम कुछ कहेंगे और उसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले तब तो फिर कैसा लगता है, तो ये उसी उसका व्यंग है कि हर आदमी अब किताब की भाषा बोलता है, मैंने भी अब किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं भी अब आदमी की भाषा समझते रहे। अपने ही बच्चों को डराने धमकाने मैंने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। अपने ही बच्चों को डराने धमकाने मैंने कुछ डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे। बच्चे कुछ दिन डरते रहे फिर असलियत जानकर हंसते रहे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे फिर असलियत जानकर हंसते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे चेहरे लगाकर मुझे ही डरा रहे हैं। जबकि मैंने उनको डरवाने के लिए बताया। ऐसा होता है हमेशा हर एक के साथ। कविता तो मैं इसको मान रहा हूं जो आप सुनाता हूं। उसी एक वृक्ष पर चिड़िया ने अपना घर बनाया है। उसी एक वृक्ष पर चिड़िया ने अपना घर बनाया है। वृक्ष और भी थे पर चिड़िया को वो ही भाया है। उसी एक वृक्ष पर चिड़िया ने अपना घर बनाया है। वृक्ष और भी थे पर चिड़िया को वो ही भाया है। अब वृक्ष क्या कहे, अब वृक्ष क्या कहे। कुछ दिन जितना सुख चिड़िया के रहते वो पाएगा। कुछ दिन जितना सुख चिड़िया के रहते वो पाएगा। क्या एक दिन चिड़िया के चले जाने पर वो सुख उसके काम आएगा। क्या एक दिन चिड़िया के चले जाने पर वो सुख उसके काम आएगा। चले जाने की पीड़ा को क्या वो जरा भी कम कर पाएगा। चले जाने की पीड़ा को क्या वो जरा भी कम कर पाएगा। जो भी हो वृक्ष चुप है, जो भी हो वृक्ष चुप है। सब चुप रहो चिड़िया घर बना रही। उसे बना नहीं दूँ, ये मत सोचो कि आगे क्या होगा।
वर्तमान में।
और दूसरा इसका ये भी है कि अपन तो कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन करने के बाद मिटेगी चीज तो उसको लेकर के क्यों अपन अभी से चिंतित रहो कि फिर मिट जाएगी। हम काहे को बनाए, हम तो बना लेंगे और दूसरे को बनाने देंगे। चिड़िया को घर बनाने दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे जो होगा जैसा होगा। मैं देख आया हूं एक वृक्ष निर्जन वीरान में। सिल्वरकोट का है। मैं देख आया हूं एक वृक्ष निर्जन वीरान में, छायादार फल और फूलों से लदा हुआ। मैं देख आया हूं एक वृक्ष निर्जन वीरान में, छायादार फल और फूलों से लदा हुआ। पर कोई भी वहां नहीं है जो उसकी छाया में कुछ देर बैठे। पर कोई भी वहां नहीं है जो उसकी छाया में कुछ देर बैठे। कि फूलों से सुगंध और फलों से मीठापन ले। कि फूलों से सुगंध और फलों से मीठा पन ले। कि पक्षियों की चहचहाहट उसके सूनेपन को भर दे। कि पक्षियों की चहचहाहट उसके सूनेपन को भर दे। सचमुच जीवन में दिए बिना जीना आसान नहीं। मैं अभी देख के आया हूं सूने में एक वृक्ष छायादार फल और फूलों से भरा। तो क्या उसको क्या फील होता होगा। ये भी वहीं लिखा था। मैं देखता हूं एक सपना जिसे देखकर फिर जागना और नए सिरे से दुनिया की उलझनों से गुजरना अच्छा नहीं लगता। मैं देखता हूं एक सपना जिसे देखकर फिर जागना और नए सिरे से दुनिया की उलझनों से गुजरना अच्छा नहीं लगता। पूछते हो सपना क्या है। सपना भी यही होता है अपने ही बचपन का निर्दोष चेहरा। सपना भी क्या होता है अपने ही बचपन का निर्दोष चेहरा जिसमें सचमुच अपने होने का गहरा एहसास छुपा होता है। मैंने कहा ना दुनिया के बीच चेहरे बदलते, जागते रहने से बेहतर मुझे अपने असली चेहरे में सोना अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ एक सपना और फिर से जागकर मैं दीन दुनिया के बीच उलझना नहीं चाहता। शायद सोते समय ही ओरिजिनल रह पाते हैं अपन, कैसे बाकी समय ओरिजिनल फेस तो उसी समय होगा। उस दिन आप नहीं थे शायद, हमने सुना है। सर झुकाए जिंदगी में दो जगह उस दिन 20 कोई सुना बहुत लोग थे, दिशा के भी थे। उसमें यही था कि मैंने दो जगह अपना माथा झुकाया, एक सोते हुए सौंदर्य को, क्योंकि जितना सोता हुआ सौंदर्य है उससे अच्छा किसी बच्चे को सोते हुए देखो, फिर उसकी सुंदरता को देखो आप। तो मैंने वहां सिर झुकाया है और जागे हुए इंसान को, अगर इंसान जाग गया है तो सबसे सुंदर वो माथा झुकाने लायक है वहां पर, और एक दूसरा जो निर्विकार शांत पड़ा हुआ है वहां माथा झुकाने लायक है। वो किसी का प्राइवेट सॉन्ग था, सर झुकाया जिंदगी में दो जगह, सोए हुए सौंदर्य को, जागे हुए इंसान। अच्छा तो कई था नया और बाकी तो सुना। आज काल चक्र तो अपन ने समझ लिया था जनरल आउटलाइन, मैं सोचता हूँ कि उसके पहले अनुप्रेक्षा समझना भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान से पहले अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के बाद जाप, और जाप के बाद फिर ध्यान होता है, ये स्टेजेस हैं। तो अनुप्रेक्षा में हम क्या करें, क्या अनुप्रेक्षा एक निश्चित समय पर बैठ के की जाने वाली चीज़ है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है, या कि हमेशा अनुप्रेक्षा हो सकती है। तो कहते हैं दोनों चीजें, अनुप्रेक्षा एक सतत चिंतन की प्रक्रिया है, इसलिए वो ध्यान करने से पहले की जाने वाली भी है।
इसका डेफिनेशन अनुप्रेक्षा
वो बताता हूँ, वो बताता हूँ, पर ये तय कर लें कि ये अनुप्रेक्षा नाम की जो चीज है वो क्या है, किस तरह की है। अनुप्रेक्षा एक, या एक कह लें कि वैसे अर्थ तो क्लियर हो गया, अनुप्रेक्षा मतलब सतत चिंतन की प्रक्रिया,
आपने बोला
मुहूर्त मुहूर्त चिंतनम अनुप्रेक्षा, किसी भी चीज के बारे में बार बार चिंतन करना, सतत चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा।
अच्छी हो या बुरी हो,
हाँ कहते ना कि भैया इनकी भावना अच्छी नहीं हमारे प्रति, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं जी हमारे बारे में गलत ही गलत सोचते हैं, तो ये जो ये अनुप्रेक्षा है, वो अनुप्रेक्षा शब्द जो कि टेक्निकल है, भावना शब्द जो है वो सामान्य प्रचलित है, अनुप्रेक्षा तो लिमिटेड है, 12 ही है, भावनाएं तो अशुभ भावनाएं भी हैं और शुभ भावनाएं भी हैं, भावनाओं को वैराग्य भावनाएं भी हैं, मेरी भावना भी भावना है, और व्रतों की सुरक्षा के लिए 5-5 भावनाएं हैं, ये सब भावना के अंतर्गत आएगा, पर अनुप्रेक्षाएं 12 ही हैं। अनुप्रेक्षा का मीन्स बहुत क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग विद विजुअलाइजेशन इज अनुप्रेक्षा, एक ऐसी समझ जिसके पीछे दृष्टि भी है। हम कई चीजों को जानते हैं लेकिन उन्हें हम महसूस नहीं करते हैं। अनुप्रेक्षा हमारे अनुभूति के क्षणों की प्रक्रिया है, जो हमने जाना उसे हम अनुभव कर रहे हैं, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, विजन जिसको अपन कहते हैं, हम उसको स्पष्ट देख रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज के बारे में हम सुनते हैं कि यहां सब चीजें क्षणभंगुर हैं, ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई, पर आपने कभी उनकी क्षणभंगुरता को फील किया, आपने देखा गौर से कि हाँ ठीक बात है, मैं इन्हीं क्षणों में जब मैं जान रहा हूं कि ये फ्राइबल है, तब उन्हीं क्षणों में मैं अनुभव भी कर रहा हूं कि हाँ सचमुच है, अभी मेरे हाथ में कांच का ग्लास था, छूट कर गिरा, टूट गया है, मुझे इस समय रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हंसने की आवश्यकता है, मुझे सिर्फ शांत भाव से इस बात पर विचार करना है कि यहां जो भी है वो सब एक न एक दिन देर सवेर टूट जाने लगा, हो गई आपकी अनंत अनुप्रेक्षा हो गई। पर इस सब के बावजूद ये तो आधा हुआ अनुप्रेक्षा का पोर्शन, अनित्यता का विचार, लेकिन अनित्य के पीछे आखिर ऐसा क्या है जो कि शेष रह जाता है, जो नित्य है उसका हम विचार करते हैं, वो हो जाता हमारा ध्यान, हम इधर से हट करके उधर चले जाते हैं, पहले हम वस्तुओं की वास्तविकता का विचार करते हैं, वस्तु की वास्तविकता का सतत चिंतन करना यह अनुप्रेक्षा है। अब अपनी परिभाषा आ गई कि वस्तु की वास्तविकता का सतत चिंतन करना ये अनुप्रेक्षा है, और वस्तु की वास्तविकता को जान करके उसके आर पार देख लेना ये अनुप्रेक्षा से ध्यान में जाने की कोशिश है। अभी तो हमने सिर्फ वास्तविकता देखी, अब हम ध्यान में जा रहे हैं, तो ध्यान में जाकर के क्या हम किस पे एकाग्र होंगे, हम जो चीज टूट रही है अनित्य है उस पे तो एकाग्र हो नहीं सकते, इसके पीछे क्या छुपा, क्षणभंगुर के पीछे छिपे हुए शाश्वत को जब हम अपना ध्यान का ध्येय बना लेते हैं तब वो हो जाता ध्यान, और जब तक हम उसकी क्षणभंगुरता का विचार करते रहते हैं तब तक वो अनुप्रेक्षा कहलाती, दूसरी भाषा में कहें कि जब तक हम पर्याय की तरफ दृष्टि रखते हैं तब तक हम अनुप्रेक्षा करते हैं, उसके पीछे ये पर्याय किस द्रव में से निकल रही उस द्रव की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये हमारे कदम बढ़ गए ध्यान की तरफ। अनुप्रेक्षा सिर्फ एक विचार की प्रक्रिया है, और जब उसमें से हम विचार करते करते किसी एक जगह पर रुक जाते हैं तो वही हमारा ध्यान बन जाता है, या किसी एक चीज को जिस पर हम विचार कर रहे हैं उसी को बार बार घोकना शुरू कर दिया, उसी का उच्चारण शुरू कर दिया, अनित्य अनित्य अनित्य। अभी तो अपन ने लिया था कि पंच परमेष्ठी वाचक शब्द, पर अपन इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि चीजें अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं, मैं निरंतर इसी चीज का उच्चारण कर रहा हूं ताकि जब भी मेरे हाथ में कोई चीज आए तो मैं उसको स्टेबल ना मान बैठूं। असल में पानी पर खींची हुई लाइन तुरंत मिट जाती है तो मिटती नजर आती है, रेत पर खींची हुई लाइन हवा चलने पर मिटती है, थोड़े देर से समझ में आती है, और चट्टान पर उकेरी हुई लाइन कई वर्षों तक दिखाई पड़ती तो लगता है कि शाश्वत है, पर एक दिन वो भी टूट जाती है। क्षण भंगुरता भी हमको आसानी से दिखाई नहीं पड़ती, हम उसी में उसी को हम शाश्वत मान बैठते हैं। अनुप्रेक्षा हमें यह सिखाती है प्रति क्षण कि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा स्वीकार करें, और एक बार व्यक्ति अगर उसको अंतरंग से स्वीकार कर लेता है तो फिर आसानी होती है। यही अनुप्रेक्षा का कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग विद विजुअलाइजेशन इज अनुप्रेक्षा। बहुत सीधी सी परिभाषा, या कि वास्तविकता का बार बार चिंतन करना, वस्तु की वास्तविकता का बार बार चिंतन करना। तो ध्यान करने से पहले हम वस्तु की वास्तविकता का चिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षा वहां भी जरूरी है, और दूसरा सामान्य रूप से हम रोजमर्रा के अकेला राजा राणा छत्रपति हातिम के अस्वार ये पढ़ लेना तो पाठ की तरह सुबह शाम किया जा सकता, पर वो तो है ही अनुप्रेक्षा। लेकिन ध्यान से पहले हम
उसका मतलब जानना,
उसका मतलब अकेला नहीं जानना, उसके पीछे क्या हम छिपा हुआ क्या है, हिडन क्या है, भाव क्या है, वो जानना, अर्थ जानना नहीं है।
और भाव दोनों जानना,
अर्थ के मायने अगर आप भाव लेते हैं तो हमें मंजूर है, लेकिन अर्थ के मायने हम लोग शब्दार्थ ले लेते हैं,
भाव के
इंटेंट क्या है उसके पीछे,
हम हमारी अप्रोच क्या है, हम कहां पहुंचना चाहते। तो अनुप्रेक्षा जो है विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ, विद अंडरस्टैंडिंग, हम जान रहे हैं और उन चीजों को तुरंत अनुभव भी कर रहे हैं। और ये अनुभूति होती है, वो क्षणिक होती है, जब कोई व्यक्ति हमारा प्रिय व्यक्ति हमको छोड़ देता है या समाप्त हो जाता है तब नश्वरता का बहुत सारा ख्याल आता है, इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य, किसी के मरने पर जो है थोड़ा, हाँ सब अनित्य है। कहते हैं कि इसको आप लगातार बनाइए, ये अनित्यता आपके भीतर लगातार बनती रहे चीजों के प्रति भी। मैं जो जो चीजें लाता हूं और मेरे अंदर ही रहती कि ये बहुत दिन तक टिकेंगी, लेकिन वे बहुत दिन नहीं टिकती हैं, उसके पहले ही समाप्त हो जाती हैं, तो मैं दुखी हो लेता हूं कि किताब अभी तो लेके आया था और ये इतनी जल्दी फट गई, ना बेटे के हाथ में देते ना फटती। लेकिन उसी क्षण विचार करें कि किताब तो फटने की चीज ही, वो तो फटेगी, कांच का गिलास है वो मेरे हाथ से नहीं दूसरे के हाथ से टूट के गिरा, पर जब भी गिरेगा तो टूटने के लिए। उन क्षणों में जबकि चीजें नष्ट होती हैं, मैं उनके पीछे छिपे हुए शाश्वत को देख लेता हूं, तब फिर मेरा अनुप्रेक्षा करना सार्थक है। जब मुझे लोग यहां पर जिनको मैं शरण मानता हूं वे मेरे से बिछुड़ जाते हैं, तब मेरी वास्तविक शरण क्या है इसका ख्याल आ जाने का नाम अशरण अनुप्रेक्षा है। जब मैं संसार में धक्का खाता हूं, सुख दुख का अनुभव करता हूं, तब सच्चा सुख किसमें है इस बात का ख्याल आ जाए मोक्ष का, तो यह संसार अनुप्रेक्षा है। और जब मैं अपने शरीर को अपना मान करके बैठ जाता हूं और उस शरीर के माध्यम से या कि और लोगों के माध्यम से सुख दुख पाता हूं और अकेले ही भोगता हूं, तब मुझे ये ख्याल आ जाए कि यहां सब अपने सुख दुख को अकेले ही भोगते हैं, मैं यहां अकेला ही हूं, एकत्व भावना। जब शरीर पर आने वाली पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा मान लेता हूं, तब मुझे ये ख्याल आ जाए कि नहीं शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। जब शरीर की आधी व्याधि हो जाने पर और उससे जो है असुचि बहने पर, गंदगी हो जाने पर मैं अपने और दूसरे के शरीर से घृणा कर बैठता हूं, तब मुझे उस समय ध्यान आ जाना चाहिए कि शरीर तो सिर्फ माध्यम है, इसके भीतर कोई पवित्र बैठा है, मुझे उसे पवित्र बनाना है, यह असुचि भावना, यह असुचि अनुप्रेक्षा। शरीर की पवित्रता के साथ साथ आत्मा की, शरीर की अपवित्रता के साथ साथ आत्मा की पवित्रता का विचार मेरे भीतर आ जाता है अब, तो फिर मेरी असुचि भावना या असुचि अनुप्रेक्षा होगी। छह अनुप्रेक्षाएं इतनी आसान है, अनित, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। फिर उसके बाद आती है आश्रव। मैं निरंतर जो शुभ और अशुभ कर्म करता रहता हूँ उसके द्वारा ही मेरा संसार बढ़ता रहता है। मैं पहचानूं कि मैं कुछ भी करूंगा यहाँ पर कर्म आएंगे, ज्ञात भाव से करूं, अज्ञात भाव से करूं, मंद भाव से करूं, तीव्र भाव से करूं, या कि जान कर, या कि मैं किसी अन्य वस्तु के माध्यम से करूं, या अपने ही कर्म के उदय में करूं, किसी भी तरह से करूं, मैं जो भी करूंगा यहाँ पर उसका इन्फ्लक्स होने वाला है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको कि आश्रय नहीं होता है। वे कैसे लोग हैं? जो सुख दुख में समता रखते हैं उनके आश्रय नहीं होता है। मैं जानूं कि जब जब मैं सुख दुख में समता नहीं रखता हूं तब तब मेरे आश्रय निरंतर होता रहता है, जब मैं समता रखता हूं तो आश्रय रुक जाता है। यही आश्रय अपेक्षा है। और ये जो समता नाम की चीज है जिससे आश्रय रुक जाता है, उसी का नाम तो संवर है। मैं निरंतर इस बात का विचार करूं कि हाँ, मुझे अगर आत्मा में आने वाले कर्मों को रोकना है तो मुझे व्रत, नियम, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषय, जय, इन सब का मुझे अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं संयमित हो पाऊंगा। जो जो आश्रव के कारण है उनसे मुझे बचना चाहिए, ये मेरे भीतर भावना हमेशा आ जाए। जब जब भी सुख दुख की अनुभूति हो मैं जल्दी से समता धारण कर लूं ताकि संवर हो सके, ऐसा विचार आ जाए। बहुत प्रैक्टिकेबल है तुरंत कि अरे काय को कर्म बांध रहे हैं। जैसे कोई ने गुस्सा दिला दी और अपन को गुस्सा आने वाली है, उसी समय सोच लिया क्या गुस्सा करेंगे तो इसका तो जो है सो बिगड़े गई, हमारा तो कर्म का आश्रय होगा। आश्रय अनुप्रेक्षा यही तो कह रही है कि थोड़े समता रखो, नहीं तो आश्रय होने वाला है। अकेले पढ़ने की नहीं है कि जो जोगन की चपलाई ताते वह आश्रय भाई, आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। इतना कहना तो बहुत आसान है पर मन, मन वचन का है कि हर क्रिया से मेरे भीतर कर्म आता है और मुझे वो दुख देता है। जो बुद्धिमान है उन्होंने मन वचन का है कि क्रिया को छोड़ने का संदेश दिया है। ये पढ़ लेना तो आसान, पर रोजमर्रा के जीवन में कैसे, मैं चाहता हूँ कि उस तरह अपन उसको समझे।
प्रैक्टिस
की जरूरत है, उसमें
कोई
एप्लीकेशन
इतना
सोचने
के लिए टाइम ही कहाँ रहता है।
इसके पहले सोच लो ना, गुस्सा
एक सेकंड भी नहीं लगता।
मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अनुपेक्षा करता होगा उसका संस्कार इतना प्रबल होगा कि उसके लिए या तो गुस्सा आएगा नहीं, आएगा तो उसका ड्यूरेशन कम होगा, क्योंकि जैसे ही आएगा उसके भीतर अनुपेक्षा निरंतर चल रही है कि क्या कर रहा हूँ मैं। इतना जानकार होकर के, समझदार होकर के, सामने सामने देख रहा हूँ कि अब भी नाराज होऊंगा तो आश्रय तो हो गई, मेरे कर्म आ रहे हैं, मेरे कर्म निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरा संस्कार प्रबल होता जा रहा है। मैं गुस्सा करके और सामने सामने देख रहा हूँ, गुस्सा के क्षणों में देख रहा हूँ कि मेरा संस्कार गुस्सा का प्रबल हो रहा है। कर तो रहा हूँ गुस्सा, लेकिन संस्कार प्रबल हो रहा है, आश्रय हो रहा है। ये सजगता, नहीं तो फिर अनुप्रेक्षा का कोई मतलब नहीं। अनुप्रेक्षा बहुत सजगता की चीज है, प्रतिक्षण व्यक्ति जागृत है, इसलिए तो कहा कि विजुअलाइजेशन, देख रहा है वो सामने सामने, अकेला जान नहीं रहा है। अपन लोग कई चीजें हाँ मुझे मालूम है, उसी समय किसी से कह दो अगर के भैया काय पर राग द्वेष कर रहे हैं, कर्मों का आश्रय होगा, मालूम है मुझे, इसका मतलब है और गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि वो सजग होके अपनी चेतना से उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा कि सच तो कह रहे हैं। तो अकेले ज्ञान के लिए अनुप्रेक्षा नहीं कहा, जानने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। कोई परिभाषा बनाने वाला भी परिभाषा बनाता तो कहते बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा, तो चिंतन करते रहो। चिंतन अकेले करने से क्या होता होगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा उन्हीं क्षणों में, और ये एक बार हैबिट में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आसान कठिन हो। आसान बनाया जा सकता, बनाया जा सकता, आसान बनाया जा सकता, अपने लिए उसे आसान बनाया जा सकता। अब जब कर्म आते हैं तो मेरे ही कमी से आते हैं कर्म, जब जब मैं मन वचन काय की क्रिया करता हूँ या कषायें करता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरे कर्म आएंगे। ऐसे भी लोग हैं, फिर मुझे ये भी ध्यान आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये मेरी नियति है कि कर्म तो आएंगे, अब मैं क्या करूं, मन वचन काय की क्रिया तो करनी पड़ती हुई या कषाय तो कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। तो कहते करना नहीं पड़ती, कुछ लोग हैं बुद्धिवंत तेने निर्वेरे, जो बुद्धिमान है वे तो उनका निवारण भी करते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं। तो उसी समय सजगता आ जावे कि नहीं, मैं भी बुद्धिमानों की लाइन में क्यों नहीं खड़ा होता हूं इन सबको जीत करके, तब फौरन उसके सब तीनों लगातार आती हैं, आश्रय, संवर और निर्जरा एक साथ हैं। जैसे ही मैं आश्रय को रोकता हूं मेरी संवर अनुपेक्षा हो जाएगी, और जैसे ही मैं संवर करता हूं तो उन्हीं भावों से, जिन भावों से संवर होता है उन्हीं भावों से निर्जरा भी होना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं पाप कर्मों का आना रोक रहा हूं और अच्छे भाव कर रहा हूँ तो अच्छे भावों के द्वारा अच्छे कर्म आएंगे और बुरे कर्म जाएंगे। जाने का नाम निर्जरा है। एक एक छोटे थोड़े थोड़े पार्शियली या ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो वो निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा अनुपेक्षा क्या कहलाएगी? इसके उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे उससे पनाल से पानी आता है तो पनाल से पानी निरंतर आता चला जा रहा है, इकट्ठा होता चला जाएगा नाव के भीतर। कहते हैं कि कोई व्यक्ति ने उस नाव के उस द्वार को बंद कर दिया, छेद को बंद कर दिया, अब कैसे पानी आएगा? इसी का नाम संबर है। और फिर उसको उलीच रहे हैं, या कि उलीच नहीं रहे हैं तो तपस्या के द्वारा एवोपरेट हो रहा है, वो अब पानी भरा है और सूर्य के प्रकाश की वजह से धीरे धीरे एवोपरेट होकर के खत्म हो जाए। तालाब का उदाहरण दिया है कि तालाब में निरंतर पानी आता रहे तो तालाब कभी सूखेगा? कहते नहीं, तालाब में पहले पानी आना बंद हो और फिर धीरे धीरे एवोपरेट हो पानी तो फिर तालाब भी सूख जाएगा। इसी तरह से आश्रम, संवर और निर्जरा। निर्जरा में भी मैंने थोड़ी सजगता की आवश्यकता है। जैसे किसी ने एक उदाहरण ले लें, जैसे किसी ने हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी तो अब हम क्या कर सकते? गुस्सा हो लें, गुस्सा हो लें तो क्या होगा? आश्रम होगा, संवर तो होएगा नहीं, निर्जरा तो होएगी नहीं। अगर मैं इन क्षणों में, गुस्सा के क्षणों में मैं थोड़ा सा कमी कर दूं, मैं थोड़ा सा शांत रह जाऊं तो क्या होगा? मेरा लाभ क्या होगा? एक तो आश्रम नहीं होगा यानी संवर होगा, और जो मेरा बुरा संस्कार है वो ढीला पड़ेगा। तो ये तीनों काम मेरे हो जाएंगे बहुत आसानी से। इतना अगर विचार आ जाए, आश्रम, संवर और निर्जरा, तो तीनों भावनाएं जो है एक साथ हो सकती। एक जरा सी घटना को लेकर के, अब घटना क्या हुई है आप जैसा उसको लेना चाहे वैसा ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सजग हैं, आश्रम, संवर और निर्जरा आपको मालूम है कि कैसे निर्जरा की जाती, कैसे संवर किया जाता और कैसे आश्रम किया जाता, तो आप आसानी से जो चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। आप आश्रम चुनना चाहें तो आश्रम तो हो ही रहा, निरंतर हो रहा है। अब आश्रम में भी जो है कौन सा करना है, मुझे पाप का करना है या पुण्य का करना है, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये चॉइस है मेरी। और फिर आश्रय जो, अगर मैं पुण्य का आश्रय करता हूं तो डेफिनेट है कि मैं पाप का निषेध भी करूंगा, उसकी निर्जरा करूंगा। तो इस तरह हम इन तीनों भावनाओं को अपने जीवन में भी भा सकते हैं, आसानी से भा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लोक भावना। ये पूरा लोक, एक्चुअली लोक जो है वो कर्तृत्व का प्रतीक है। अक्सर लोग जैसे ही कहते ही साथ की संसार, तो किसी ने करा है, कोई इसे धारण करता है, कोई इसे मिटा देगा, तो कहते नहीं, ये संसार बहुत बाहरी है, एक जो मेरे भीतर संसार बना लिया है मैंने, उसका कर्ता, भोक्ता, स्वामी सब कुछ मैं हूँ, उसे नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। संसार लोक अनुपेक्षा में तो लोक का विचार किया जाता है, तो ठीक है बैठ करके और लोक का विचार कर रहे हैं। कहते इतने से काम नहीं चलेगा, लोकानुप्रेक्षा में आपने पूरे तीन लोक का वर्णन पढ़ लिया, चिंतन कर लिया, बार बार चिंतन कर रहे, नहीं उसके साथ क्या सोचना है? जब इतना बड़ा लोक छह द्रव्यों से मिलकर बनाया है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ना कोई इसे मिटा सकता है, फिर मैं जो है घर गृहस्थी के कामों में करता बना फिरता हूं, ये मेरी अज्ञानता है। इस लोक को तो किसी ने बनाया नहीं, और मैं कहता हूं कि मेरे बेटे को मैं पालता हूं, कि मेरा बेटा अपने पुण्य पाप से पल रहा है या मैं पालने वाला हूं, मेरी गृहस्थी मैं मैनेज कर रहा हूं, ये मेरा अहंकार है और क्या है? इतना बड़ा लोक है, उस लोक में मेरी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, और मैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मरा जाता हूं कि मेरे घर में एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही फील नहीं कर रहा है, तो है कहां मेरी एग्जिस्टेंस? इस पूरे लोक में कितना बड़ा लोक, उसका विस्तार पढ़ने पर घबराहट होने लगती है, कितने बड़े लोक में और मेरी अपना अस्तित्व, और उस अपने अस्तित्व के लिए मैं मुश्किल में पड़ा हूं, और मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। जैसे लोक को ना कोई बनाता है, ना कोई मिटाता है, ना कोई उसे धारण करता है, इसी तरह मेरा जो स्वभाव है उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना उस स्वभाव को कोई व्यक्ति रेगुलेट करने वाला, मैं ही उसको स्वयं अपने आप चलाने वाला, ये लोक अनुप्रेक्षण। ऐसा विचार आ जाना चाहिए, जब जब भी अपने अंदर अहंकार आए कि मैंने करा है, उसी समय ये आ जावे कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं और मैं कर क्या सकता हूं अच्छी चीज के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना, जब कोई अच्छी चीज अपने से हो जावे तब उसका उसमें कर्ता बना मत मानना, और जब कोई बुरी हो जाए मैंने ही किया है, ऐसा नहीं कि ये भी मैंने नहीं किया, नहीं तो बहुत अच्छा उपाय है फिर कि हम कर्ता नहीं है। आपने तो कहा था कि कर्ता बना नहीं डालना उसमें, तो बुरी चीज में कर्ता अभी संसार है अपना, इसलिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छी चीजों का कर्ता, अच्छी चीजों का कर्ता बनने की तो अपनी हमेशा इच्छा होती है, और बुरी चीजों में करता पना कभी नहीं डालता कोई कि मैंने किया, उसके लिए दूसरे को दोषी मानता है। अगर आप करो तो दोनों के साथ फिर न्याय करो, अच्छे का करता मानते हो तो अपने को बुरे का भी मानो।
अहंकार नहीं होना चाहिए।